त्योहार के कार्यक्रम में भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जहां भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग का दर्शन अर्जुन के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इस दूसरे अध्याय का। श्रील प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में इस श्लोक का उल्लेख किया करते थे और बहुत से प्रवचन श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के ऊपर दिए हैं। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय में भगवान अर्जुन को बुद्धि योग या भक्ति योग भी उसे कह सकते हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं। न इह अभिक्रम, इसका अर्थ है कि ये जो चेष्टा, अभिक्रम का अर्थ होता है चेष्टा, ये जो चेष्टा अर्थात कौन सी चेष्टा, भक्ति योग में की गई चेष्टा, बुद्धि योग में की गई चेष्टा, ऐसी चेष्टा कोई व्यक्ति यदि करता है नाशोस्ति, उसका नाश कभी नहीं होता। उस चेष्टा का और उस चेष्टा के परिणाम का और जो करता है, हालांकि ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा का तो नाश कभी नहीं होता। तो यहां पर अब भगवान बता रहे हैं कि भक्तिमय क्रिया या भक्तिमय चेष्टाएं, उनका नाश कभी नहीं होता, उनका परिणामों का भी नाश कभी नहीं होता। और आगे कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, केवल इतना ही नहीं कि उसका नाश नहीं होता, उसमें कभी कमतरता भी नहीं आती। जैसे कि ये हमारा जो फाउंटेन है यहां, इसमें जब हम पानी भरते हैं तो चार पांच दिन बाद लेवल कम हो जाता अपने आप। क्यों? लीक है कहीं पे, लीकेज है, तो लीकेज के वजह से लेवल कम हो जाता है, फिर भरना पड़ता है, फिर कम हो जाता है, उसे कहते हैं कमतरता। लेकिन यहां पर भगवान बोल रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते, कि न तो उसका नाश, नो लॉस नो डिमिनिशन। प्रभुपाद ने इसका अनुवाद इस प्रकार से किया। और आगे कहते हैं स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, इस चेष्टा को कोई यदि स्वल्प मात्रा में भी कर ले, कण मात्र भी कोई भक्ति योग में लग जाए, त्रायते महतो भयात, इस पूरी सृष्टि के चाहे जितने भी भय ले लो, उन जो भी भय की स्थिति हो उनमें से भयावह से भयावह स्थिति से रक्षा होती है जब कोई कण मात्र भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। तो यह है इस श्लोक का संक्षिप्त रूप में अनुवाद। और इसलिए ये दूसरे अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख श्लोक है। तो अब ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि भगवान ने अब तक जो सांख्य योग का दर्शन दिया, तो अचानक भक्ति योग पर छलांग कैसे भगवान ने लगा ली, तो उसकी चर्चा आज के हमारे सत्र में हम करेंगे कि पिछले श्लोक से क्या संबंध है आज के श्लोक का, और भगवान ने कौन सी तीन विशेषताएं बुद्धि योग की आज के श्लोक में बताई, बद्ध जीवों के लिए कैसे भगवान एक उपयुक्त विज्ञापन, किसका विज्ञापन, भक्ति योग का या बुद्धि योग का दे रहे हैं। तो पिछला जो श्लोक यदि याद है किसे, बुद्धि युक्तो यया पार्थ, याद है, एशाते विहिता सांख्य। तो इस श्लोक में कर्म बंधन प्रहास्यसी भगवान कहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण चेतना में, पूर्ण ज्ञान में कोई कर्म करता है, ये जानते हुए कि ये कर्म नहीं करने के दुष्परिणाम क्या है और ये कर्म गलत करने के दुष्परिणाम क्या है, उस ज्ञान से भगवान कह रहे हैं, उस सांख्य ज्ञान से जब कोई कर्म करता है, कर्म बंधन प्रहास्यसी, उसके कर्मों के बंधन को तुरंत काट देता है। अब मनुष्य जीवन हमें दिया क्यों है, हमारे कर्मों के बंधन को काटने के लिए, ये उद्देश्य है। ये जो शरीर हमें मिला है हमारे पिछले कर्मों के वजह से, और बंधन का शरीर कर्मों के वजह से जो हमें मिला, और अब इस बाधित शरीर से हम और कितने ऐसे कर्म कर रहे हैं, करेंगे, जिनसे एक और बाधित शरीर हम तैयार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दिया है कि एक पेड़ जब सूख कर गिर जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु जब होती है, तो वो गिरते गिरते मरते मरते वो अपने पेड़ से, अपने किसी फल से कहीं बीज फेंक देता है। मान लीजिए कोई आम का पेड़ वो सूख कर गिरा, तो आम की गुठली उस पेड़ की वो कहीं ना यहां कहीं गिरकर एक और आम का पेड़ उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है ये शरीर का, कि ये जो शरीर हमारा है, मरते मरते इतने सारे कर्म अर्जित कर लेता है, एक और शरीर उत्पादन करने की पूरी सामग्री तैयार कर मरता है, पूरी सामग्री तैयार कर लेता है मरने से पहले। तो ये कर्म बंधन ये इतना ज्यादा जटिल होता जाता है, विशेष रूप से कलयुग में, कि भागवत में कहा गया है कि इसकी जो ग्रंथि है, हमारे कर्म बंधनों की जो ग्रंथि है, नॉट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, इन ग्रंथियों को, इतनी सारी अनगिनत ग्रंथियां हैं, एक एक कर कोई सुलझाता रहेगा, जैसे ग्रंथि कितनी उलझ जाती है, उसे एक एक कर सुलझाता रहेगा तो नामुमकिन है, इसलिए काटना पड़ता। और काटने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई तेज धार वाली तलवार काटने के लिए, और उसकी तुलना की गई है, उस तेज धार वाली तलवार की तुलना ज्ञान, वो सांख्य ज्ञान से की गई है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कर्म बंधन को कैसे काटा जाए, उस सांख्य ज्ञान से ये बताया। तो अर्जुन के मन में अब एक संशय उत्पन्न हुआ, क्योंकि भगवान तो परमात्मा अंतर्यामी है, भगवान जान गए कि अर्जुन के मन में अब कोई संशय, शंका उत्पन्न हो गई। और शंका अर्जुन की ये थी, तो अर्जुन भगवान से मानो पूछे कि आपने कहा कि ज्ञान की तलवार से मैं अपने कर्म ग्रंथि को काटूं, लेकिन काटते काटते यदि धार चली गई तो होता ना, कई बार ऐसी उलझी हुई चीज आप काट रहे हो और अचानक बीच में धार चली गई, तो काटते काटते धार चली गई, तब तो फिर इतना मैंने जो मेहनत किया वो सब कुछ व्यर्थ। जैसे तीन दोस्त वो अमेरिका गए थे घूमने के लिए, और अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी ऐसी क्या कहते हैं उसको, गगनचुंबी इमारत, स्काईस्क्रेपर। तो एक ऐसा होटल था, उनको कमरा मिला 125वीं मंजिली पर कमरा मिला, तो लोग पूरा दिन भर घूम के अब आए जब अपने कमरे में जाने के लिए, तो लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। तो सोचो, लिफ्ट काम नहीं कर रही है और उनको पहुंचना है 125वें मंजिल पर, तो सीढ़ी चढ़ना शुरू किए। तो कहे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बताते हैं एक दूसरे से कि आज क्या देखा न्यूयॉर्क में, क्या हुआ, सब कुछ सुख दुख बांटते हैं थोड़ा। तो एक दूसरे को बता रहे हैं और जो भी कुछ अनुभव रहा वो दुखद अनुभव ही रहा था। पहली बार गए थे, कुछ समझ में आ नहीं रहा था, भाषा भी नहीं जानते थे। तो बताते बताते दो वो दोस्त बताते बताते कैसे तो हांफते हांफते पहुंचे। अब तीसरे वाले को पूछा कि भाई तुमने तो कुछ बताया नहीं। उसने कहा मैं क्या बताऊं, अब यदि मैं बता दूंगा तो आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो है क्या, हुआ क्या भाई? वो मैंने चाबी ग्राउंड फ्लोर में भूल गया। तो अब ये हालत होती है, अर्जुन यही पूछ रहे हैं कि इतना मैं चढ़ लिया, इतना काट लिया सब कुछ, अंत में यदि पूरा न काट पाऊं कर्म बंधन को तो फिर से नीचे जाना पड़ेगा चाबी लेने के लिए, इतना ऊपर चढ़ लिया। तो ये अर्जुन का संशय है। कई बार हमारे अंदर भी ये संशय आता है कि नहीं आता है? साधना भक्ति में हम लगे हैं और भागवत में, भगवत गीता में, और इतने प्रवचनों में इतने सारे आश्वासन हमें हमारे आचार्य देते हैं, भगवत धाम, मुक्ति, कृष्ण प्रेम, अष्टविकार, ये सब कुछ। तो कई बार संशय आता है कि इतना सब कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वहां पर तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आया इतना सब कुछ। वो क्या बोलते हैं, धोबी का, पता नहीं धोबी का कुत्ता होता है गधा होता है, कुत्ता बोलते हैं ना, कुत्ता ही होता है, कुत्ता भी होता है धोबी का, जो भी जानवर, यहां का ना वहां का, है ना। तो क्या ऐसा हाल मेरा होगा, अर्जुन के मन में ये संशय। तो अर्जुन के इस संशय को दूर करने के लिए भगवान ने ये जो आज का श्लोक, शंका निवारण अर्जुन की, और इसलिए ये हम जो अपनी साधना भक्ति में इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत प्रेरणास्पद श्लोक है। कि कई बार जब हमें लगता है कि कुछ आसार नजर नहीं आ रहे, मेरे उद्धार के कोई संकेत नहीं, कोई लक्षण नहीं, तो ये श्लोक जब हम पढ़ें तो बहुत हमें सांत्वना मिलेगी, बहुत प्रेरणा मिलेगी ये श्लोक से। तो अब भगवान बुद्धि योग या भक्ति योग की तीन विशेषताएं यहां पर बता रहे हैं इस श्लोक में। सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि कोई भक्ति योग में लगता है, प्रारंभ किया है केवल जूनियर केजी में, तो उसके आरंभ का नाश कभी नहीं होता। तो ये एक पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस विधि का कोई उल्टा परिणाम कभी नहीं होगा। हम एक एक कर कर उसकी चर्चा करेंगे। और तीसरी विशेषता भगवान बता रहे हैं, इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से उसकी रक्षा करता है। देखो, इससे अच्छा इंश्योरेंस पॉलिसी क्या हो सकता है। तो अब पहली विशेषता को यदि हम लें, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। एग्जाम टाइम चल रहा है, चल रहे हैं एग्जाम अभी तक चल रहे हैं। तो कोई विद्यार्थी जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो पढ़ाई करने जा रहा है, तो यदि हम अब इस उदाहरण को लें, ये उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने भी दिया है, इस उदाहरण को लेकर इसका विश्लेषण करें, विद्यार्थी का उदाहरण, तो वो स्कूल कॉलेज जा रहा है किस लिए? यदि पूछा जाए स्कूल कॉलेज क्यों जाता है, ऐसे ही कोई टाइम पास नहीं हो रहा है घर में, तो चलो स्कूल कॉलेज चले, ज्ञान ज्ञान अर्जित करने। क्या आजकल वो प्रमुख कारण है ज्ञान अर्जित? ज्ञान अर्जित तो घर पे भी कर सकता हूं, कितने सारे वो आजकल टीवी पे भी चैनल आते हैं, डिस्कवर दिस डिस्कवर दैट। तो ज्ञान वो पुस्तक लेकर घर पर भी पढ़कर ज्ञान अर्जित कर सकता है, और क्या कारण स्कूल कॉलेज जाने का? हाँ, पॉइंट पे आ गए हमारे प्रभु, डिग्री। हाँ, वो चाहिए ना पन्ना, डिग्री। वो घर पे कोई नहीं लाके देगा डिग्री, उसके लिए कॉलेज जाना पड़ता है। तो डिग्री हासिल करने के लिए एक विद्यार्थी कॉलेज जाता है, पैसे भरते हैं और इतने सारे नियमों का पालन करते हैं, कई बार तो कहां कहां दूर दूर जाते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहां कहां जाते हैं डिग्री हासिल करने, कि वहां से डिग्री हासिल करके आए, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, अमेरिकन रिटर्न, यूके रिटर्न। तो अब डिग्री हासिल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? पढ़ाई, हाँ, परीक्षा देनी पड़ती। और परीक्षा देने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे। तो अब ठीक है, इस उदाहरण को हम अच्छी से समझें कि मान लो उसने पढ़ाई की बहुत अच्छी, ऐसे नहीं, अच्छी से जग कर बहुत अच्छी से उसने पढ़ाई की, दिन रात पूरे साल भर एक रात कर कर उसने पढ़ाई की। अब क्या केवल पढ़ाई करने मात्र से उसको डिग्री मिल जाएगी? हा? केवल पढ़ाई उसने अच्छी से की है, सब कुछ उसे कंठस्थ है। हाँ, परीक्षा उसने पढ़ाई की। ये चित्र मैं क्यों आपको दिखाया हूं, क्योंकि एक सच्ची घटना हुई। मैं मुंबई में एक कॉलेज में प्रीचिंग किया करता था, यूडीसीटी कॉलेज, वहां के एक विद्यार्थी के साथ ये घटना हुई। इस विद्यार्थी ने एग्जाम के एक हफ्ता पहले इतनी पढ़ाई की, फाइनल एग्जाम इतनी पढ़ाई की, चार दिन लगातार सोया नहीं है, चार दिन लगातार सोया नहीं, एक झपकी नहीं। और जब क्वेश्चन पेपर आया तो इसे जितना याद था किसी को याद नहीं था, इतनी पढ़ाई इसने की थी। लेकिन उसकी हालत यह हुई थी, आप विश्वास नहीं करोगे, ये फेल हुआ वो विद्यार्थी, क्योंकि वो उसकी शारीरिक हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी चार दिन नहीं सोने की वजह से, वो पेन उठा नहीं पा रहा था, वो आंखें उसकी खोल नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे मानो कि आंखों के ऊपर कोई बहुत वजन लग दिया, ऐसे आंखें बंद होके सो गया, वो सब उत्तर पता थे उसको प्रश्नों के. ही न्यू ऑल द आंसर्स वर्बैटिम बट ही स्लेप्ट एंड फेल्ड. तो यहां पर यह उदाहरण दिया गया है कि यदि किसी को पूरी जानकारी है, पूरी पढ़ाई उसने की है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं उसकी कि वो पास होगा, कोई गारंटी नहीं उसकी. अच्छा चलो, उसने सही सही पेपर लिख दिया, अब क्या गारंटी है वो पास होगा? उसने पढ़ाई भी सही तरीके से की, पेपर भी उसने वो परीक्षा का दिया, क्या अब मैं पूछूं क्या गारंटी वो पास हो जाएगा? हाँ, अब भी गारंटी नहीं वो पास होगा, है ना. तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये डिग्री हासिल करने के हर एक स्टेप पर कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, मान लो कि पास हो गया, पास हो गया, अब डिग्री मिल गई उसको, है ना, पास हो गया तो डिग्री मिल गई. तो अब यदि पूछें कि डिग्री उसे प्राप्त हो गई तो क्या जरूरी है कि उसे नौकरी भी मिलेगी? क्योंकि डिग्री खाली वो दीवार पर फ्रेम करके लगाने के लिए तो नहीं ली ना उसने. तो ये उदाहरण दिया गया है कि चाहे वो पढ़ाई क्यों ना कर ले, चाहे वो परीक्षा में बैठे क्यों ना, चाहे वो पास क्यों ना हो जाए, डिग्री क्यों ना हासिल कर ले, उसे नौकरी मिले. एक वही यूडीसिटी कॉलेज का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग, यूडीसिटी एक ऐसी कॉलेज है पूरी एशिया में नंबर वन केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहां का पास आउट वो एक 8000 की नौकरी में लगा हुआ था मुंबई में, कोई पेंट कंपनी में, पता नहीं डब्बा लेके कर रहा था क्या पेंट. तो कोई जरूरी नहीं कि आप इतना सब कुछ किए तो गारंटी से जो आपके जो कि आकांक्षाएं थी, एंटिसिपेशन जो कुछ था वो पूरा होगा. यह है भौतिक चेष्टाओं का परिणाम. कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्रियां हासिल की, और दो वक्त की रोटी खाने के लालच हो रहे हैं, और कई ऐसे एकदम वो भी ठीक से लगाना नहीं आता होगा, कहां लगाना बताओ, लेकिन माला माल. तो ये उदाहरण दिया गया है कि भक्ति योग का कोई आरंभ भी कर दे, अर्थात जैसे कि अब ये विद्यार्थी का उदाहरण कि मानो उसने किताब की तरफ देख लिया, हाँ, किताब पड़ी है उसके उसके लॉकर में पड़ी, उसने लॉकर खोला, बस एक नजर किताब के ऊपर चली गई, क्या उसका कुछ फायदा होगा उसका? लेकिन भक्ति योग में, भक्ति योग ऐसा है, भगवान बोल रहे हैं कि यदि कोई अनजाने में भी और ये न के न प्रकारेण किसी भी भक्ति के अंग के संपर्क में वो आ जाए तो वो जो उसका क्रेडिट है वो कभी नाशोस्ती, उसका कभी नाश नहीं होगा. अच्छा, ये उदाहरण जो विद्यार्थी का, मान लो कि उसने पीएचडी हासिल कर ली और बहुत अच्छी नौकरी भी उसे मिल गई, सब कुछ जो उसने प्लान किया था, योजना की थी उसके अनुसार, अब वो खत्म हो गया, मर गया, तो अगले जन्म में क्या अब उसके याद आ गया कि पिछले जन्म में मैं अंबानी था, जो भी कुछ बड़ा उद्योगपति था, या मैं इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी हासिल किया, तो क्या वो अगले जन्म में वो पीएचडी जो पिछले जन्म में उसने हासिल किया था उसको यूज कर सकता है? खत्म. लेकिन भक्ति योग इस प्रकार का नहीं. यदि किसी व्यक्ति ने एक बार भगवान का नाम सुन भी लिया, केवल श्रवण कर लिया, उच्चारण भी नहीं किया, केवल श्रवण कर लिया, एक बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन भी कर लिया या प्रसाद खा लिया, या ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि परिहास में भगवान का नाम, वो भी सही मायने में नहीं, जैसे कि वो एक मुसलमान का उदाहरण है कि वो शौचालय के लिए बाहर जंगल में गया था तो एक सुअर उसके पीछे भागा, तो सुअर को देखकर उसने हराम हराम चिल्लाया, वो तो गाली है ना हराम, लेकिन उसके अंदर राम का नाम था तो उसका उसको मुक्ति मिली, मरते मरते हराम हराम बोल रहे हैं और मुक्ति मिली। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। तो यहां पर भगवान ये बोल रहे हैं कि यदि अर्जुन किसी ने आरंभ भी कर दिया वो, तो उसका उद्धार निश्चित है, भगवान उसका उद्धार करा कर रहेंगे। ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस विधि का कोई उल्टा परिणाम नहीं, प्रत्यवायो न विद्यते। अब यदि हम आप लोगों से पूछें कि क्या आपके जीवन में आपने कुछ ऐसी क्रियाएं की हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका उल्टा परिणाम आपके ऊपर आएगा, आप सोच के गए थे कि कैसे आपकी खुशहाली होगी, समृद्धि होगी, सफलता होगी, लेकिन उसका पूरा विपरीत, ऐसा हुआ कभी? टोटल ऑपोजिट, उल्टा। हाँ, कोई बिजनेस चालू किया, एकदम ये सोचते हुए कि ये बिजनेस में इतने करोड़ों रुपया प्रॉफिट मिलेगा, इतने लोगों को मिल रहा है, हुआ ऐसा कभी? या सुना पूरा चौपट उल्टा सब कुछ और भरपाया करना पड़ा? हाँ, जापान में सुनामी, मुझे कोई SMS भेजा है कि एक छोटा सा लड़का वो समुद्र का तिरस्कार कर रहा है, समुद्र का तिरस्कार करते हुए बोल रहा है कि आई कैन नेवर फॉरगिव यू इवन इफ यू टच माई फीट मिलियंस ऑफ टाइम्स। तो समुद्र बोलता है हाउ कैन आई फॉरगिव ऑल दीज पीपल हु हैव बीन किलिंग ऑल द एक्वेटिक्स इन माई ओशन। और फिर उसमें बहुत कुछ लंबा चौड़ा उसमें लिखा है कि सबसे ज्यादा वो मछलियां खाने वाला देश वही है। खैर, हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, तो हम प्रार्थना करेंगे एक भक्त होने के नाते, वैष्णव होने के नाते। जैसे कि वो पिछली बार जब सुनामी आई तो थाईलैंड में, कहा थाईलैंड लोग जाते हैं वहां पर केवल मौज मस्ती करने के लिए। तो वो जो बीच, पुकेत कर बीच है वहां, वो बीच पर एक व्यक्ति बैठा, देखा वो लहर, सुनामी की लहर बढ़ती जा रही। तो वो अपना कैमरा निकाला, अरे ऐसी फोटो तो और कोई खींच नहीं पाएगा, तो फोटो खींच रहा है वो, और उसे पता नहीं कि वो अपने मृत्यु की फोटो खींच रहा है। तो वो गया था वहां पर मौज मस्ती करने, उल्टा परिणाम होता है ना, हवाई जहाज की यात्रा है ना, हवाई जहाज में यात्रा जब करते हैं तो सब एकदम, जब नए नए हवाई जहाज में बैठते हैं तो अरे अभी उड़ेगा। एक बार एक हमारे है ना, पहली बार हवाई जहाज में बैठे वो, और उनको सब पहले से बता दिया था कि क्या एक्सपीरियंस रहता है, उनको ये बोल दिया था कि जब हवाई जहाज एकदम ऊपर पहुंच जाता है ना तो खिड़की से बाहर देखो, सब ऐसे चींटी जैसे दिखते हैं। तो वो बैठा, विंडो सीट मिल गई उसको, अब वो बगल वाले को बता रहा है चिट्ठी जैसे दिख रहा हो, कैसा आदमी देख चिट्ठी जैसे दिख रहा हो। तो उसके बगल वाला वो देखा, बोला अरे वो सच की चिट्ठी, प्लेन टेक ऑफ नहीं लिया अभी तक। तो हवाई जहाज में कोई जाता है तो एकदम उसको सब कुछ नया ना, अभी ऊपर उड़ूंगा मैं, उसको विश्वास नहीं होता ऊपर ही हूं क्या, लगा ही नहीं हवाई कुछ हिल नहीं रहा। तो ट्रेन में क्या सब कुछ दर 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 सब कुछ हिलता रहता है, समझ रहे हाँ ट्रेन चल रही। तो वहां पर मजा आता है, इतनी ऊपर हूं मैं, उस लिखा रहता है 30,000 फीट ऊपर है यहाँ, 30,000 फीट ऊपर। और फिर जब अनाउंसमेंट होता है कि एक इंजन काम नहीं कर रहा है, तो जितनी तेजी से ऊपर गया ना वो, उतनी तेजी से अभी नीचे भी आ रहा है। फिर वो सब वो इंस्ट्रक्शंस याद आते हैं कि ये यहां से थैली गिरेगी, वहां से थैली गिरेगी, ये बांध लेना, वो बांध लेना, यहां से कूद जाना। तो फिर उल्टा परिणाम है ना, वही जो आनंद देने का स्रोत वो अब उल्टा पड़ा। तो यदि कोई भक्ति योग के विषय में पूछे कि भाई मैं इतना जो 16 माला कर रहा हूं, जितना भी माला कर रहा हूं, इतने नियमों का पालन कर रहा हूं, इतने समय से ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो क्या इसका उल्टा परिणाम तो नहीं होगा? कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं। मेरा एक मित्र था, वो मुझे कहता था कि तू कांदा लहसुन छोड़ दिया तो पता है कांदा लहसुन छोड़ने से बहुत दुष्परिणाम होते हैं। उसने पूरा लिस्ट लाया था कांदा लहसुन छोड़ने से दुष्परिणाम क्या होते हैं। काश अभी होता है, जब आजकल कांदे की रेट्स क्या क्या हो रही। तो लोगों के अंदर ये एक भ्रांत धारणा है कि यदि ज्यादा ये माला घुमाओगे तो फिर ये जो पता नहीं कौन सा चक्र कहां चला जाएगा, अंदर के सारे जो चक्र हैं उसके अंदर कुछ हेरा फेरी हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं नॉर्मल जीवन जियो, नॉर्मल जीवन। नॉर्मल जीवन क्या है? गधे के जैसे जीते रहो, नॉर्मल जीवन। तो ये एक भ्रांत धारणा होती है कि उल्टा परिणाम तो ना हो जाए। तो यहां पर सर्वप्रथम हम लेंगे कर्मकांड की विधि को। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में गोवर्धन लीला, और गोवर्धन लीला ये इसका कारण हुआ क्योंकि इंद्र पूजा को भगवान ने रोका। हर वर्ष नंद महाराज इंद्र की पूजा किया करते थे, इंद्रयाग। तो इंद्रयाग को भगवान श्री कृष्ण ने रुकवा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण रुकवा दिए इंद्र पूजा को, तो हुआ क्या? देखो इंद्रदेव ने किया क्या, संहार के पूरे बादल बुला लिए, प्रलय के संवर्तक और बाढ़, ये सब सुनामी तो कुछ नहीं है जो इंद्र ने वृंदावन के ऊपर की थी। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इंद्र की पूजा वो हर वर्ष किया करते थे, है ना। और एक वर्ष उन्होंने, ऐसा नहीं कि इंद्र भगवान का कोई अपमान किया था, केवल पूजा नहीं की थी। ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर दिया कि भाड़ में जाओ कुछ नहीं करना है अभी हमको, नहीं, बस नहीं की पूजा। तो नहीं करने का उल्टा परिणाम देखो। तो इसे क्या समझ में आता है कि जो कोई कर्मकांड में लगा रहता है तो कर्मकांड को जब वो पूरा नहीं करता है तो उल्टा परिणाम, वो उल्टा परिणाम उसके अंदर वो भय वो सताता रहता है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा कुछ नहीं है। कोई यदि भगवान श्री कृष्ण को गाली देते हुए भी भक्ति योग छोड़ता है, लेकिन फिर भी उसका जो जितना भी उसने किया है, क्योंकि जैसे शिशुपाल गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, 100 गालियां दे दी उसने, लेकिन फिर भी भगवान के संदर्भ में सब कुछ था ना, सब कुछ भगवान के संदर्भ में था, तो उसका कोई उल्टा परिणाम नहीं, उसको मुक्ति मिली शिशुपाल को। और यहां पर इंद्रियाग केवल नहीं किया तो इतना बड़ा उनको सहना पड़ा। तो कर्मकांड की विधि का एक उदाहरण यह है। अब यदि हम ज्ञान योग को ले, मंत्रोच्चारण में त्रुटि होने से उल्टा परिणाम हो जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि देवराज इंद्र, उन्होंने अपराध किया था उनके गुरु महाराज का, बृहस्पति का, और फिर वो छठे स्कंद में पूरी कथा है कि उसका दुष्परिणाम उनके ऊपर आया। तब वो त्वष्टा नामक एक ब्राह्मण के जो पुत्र विश्वरूप, उनके पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि उनके पास जाओ, यज्ञ करवाओ, और जो भी तुमने गलती की है वो गलती को सुधारो। वो गए और विश्वरूप जो थे वो राक्षसों का भी यज्ञ किया करते थे, तो वो कर रहे हैं इंद्र के लिए यज्ञ और आहुति राक्षसों को भी दे रहे हैं साथ साथ। तो इंद्र को समझ में जब आया तो विश्वरूप को मार दिया, खत्म कर दिया इंद्र। तो अब उनके जो पिता त्वष्ट, उन्होंने यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन उस यज्ञ में हुआ क्या कि वो जो यज्ञ कर रहे थे और आहुति दे रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे, तो मंत्र उन्हें यह कहना था कि एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो इस यज्ञ से जो कि इंद्र का अरि हो, अर्थात इंद्र को मारे, इंद्र का शत्रु हो। लेकिन मंत्रोच्चारण में गड़बड़ कर दिया उन्होंने, वो मंत्रोच्चारण में सही प्रकार से वो इंद्र अरि नहीं बोल पाए, तो हुआ क्या कि एक ऐसा पैदा हो जिसका शत्रु इंद्र हो, इंद्र जिनके शत्रु हो और इंद्र जिनको खत्म करें, तो फिर वो वृत्रासुर की कथा आती है। तो ये एक उदाहरण श्रीमद् भागवत में है कि मंत्र में एक सिलेबल यहां वहां चला गया, उल्टा परिणाम। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई उल्टा बोले, सुल्टा बोले, बीच से बोले, शुरू से बोले, अंत से बोले, कहीं से भी इसको बोले, उसको कभी उसका दुष्परिणाम या उल्टा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आने वाला है 19 तारीख को। तो चैतन्य महाप्रभु जो महावदन्या अवतार, सोचिए कि अगर ऐसा कोई मंत्र देते कि यहां वहां, सोचो कि कोई ऐसा मंत्र होता जैसे श्रीमद् भागवत की जो कथा है त्वष्ट, और ऐसा नहीं था कि वो हमारी तरह बीच में डुलकी मार रहे थे मंत्र उच्चारण करते समय, सो रहे थे। कई बार हम जप करने बैठते हैं, महामंत्र शुरू होता है हरे कृष्ण से, फिर आंख खुलती है, हरे हरे। तो हमारा हाल ऐसा है, सोचो कि ऐसा कोई जटिल मंत्र चैतन्य महाप्रभु लाकर हमें देते तो पता नहीं कौन सी योनि में पहुंच गए होते हम अब तक। तो ये उदाहरण है मंत्रोच्चारण में त्रुटि। इसलिए वो एक सुंदर श्लोक जो हम अक्सर कोट करते हैं, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कि यदि कोई संस्कृत के व्याकरण को नहीं जानते हुए गलत उच्चारण करता है, विष्णवे के बदले विष्णाय बोलता है, गलत व्याकरण है संस्कृत का ही, प्रथमा चतुर्थी नहीं जानता संस्कृत की, लेकिन यदि उसके अंदर प्रेम है, भक्ति है, भावग्राही जनार्दन, भगवान वो भाव को स्वीकार करते हैं। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो ये है मंत्रोच्चारण में त्रुटि का उल्टा परिणाम। चिकित्सा कोई यदि गलत डायग्नोसिस कर देता है, जैसे हमारे पिताजी, उनको यहां पेट के निचले भाग में कुछ दर्द उत्पन्न हुआ था, तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोल दिया अपेंडिसाइटिस है, ऑपरेशन कर लो। तो ऑपरेशन खोल लिया, अंदर कैंसर था, और वो ऑपरेशन के वजह से फिर वो बढ़ने लगा, छू दिया उसको कैंसर को, वो बढ़ने लगा। और फिर उनके पास डॉक्टर ने कहा कुछ 2 महीने ही बाकी थे, तो क्या था, एक वर्ड सॉरी। तो गलत चिकित्सा के वजह से उल्टा परिणाम। कितने सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गलत डायग्नोसिस हो गया है। कई बार तो सर्जन अंदर वो कैंची भूल जाते, सोचिए। तो ये सब भौतिक संसार का स्वरूप है, उल्टा परिणाम। गलत तपस्या से उल्टा परिणाम। तो यहां पर हम देखे हैं कर्मकांड, ज्ञानकांड, अष्टांग, इसमें गलत तपस्या, वृकासुर, शिवजी का तथाकथित भक्त, और चमड़ी निकाल निकाल कर अग्नि में डाल रहा है, ऐसी तपस्या देखो, और फिर अपना सर धड़ से अलग कर कर डालने ही वाला था, शिव जी आए तो क्या वरदान मांगता है कि मैं किसी के भी सर को हाथ रखूं तो भस्म हो जाना चाहिए, चूर चूर उसका सर हो जाना चाहिए, ये वरदान मांगता है देखो, इतनी तपस्या करने के बाद। तो शिव जी इनको देना पड़ा, फिर हाथ कर कर शिव जी के पीछे भाग रहा है कि आपका सर मैं चकनाचूर करूंगा। तो गलत परिणाम हुआ क्या फिर उसका, कि भगवान विष्णु बीच में आए और उसको बेवकूफ बनाए, बोले अरे पता नहीं इनका ट्रैक रिकॉर्ड शिव जी का, कुछ काम नहीं करता, इनका वरदान कभी देते हैं। बोला अच्छा, बोला हाँ पूरा रॉन्ग नंबर लगाया तुमने। तो उसको बोला मतलब इतना बड़ा धोखाधड़ी हो गई मेरे साथ। बोला और क्या, टेस्ट करो, लगा के देखो अपने सर। तो बेवकूफ लगा दिया उसने वहीं पे चकनाचूर। तो गलत तपस्या करने का दुष्परिणाम ये वृकासुर। तो इसे इस समझ में आता है कि चाहे कर्मकांड हो, चाहे ज्ञानकांड हो, चाहे अष्टांग, इन सब में यदि कोई थोड़ी भी त्रुटि कर दे, और वो तो अवश्य ही त्रुटि होने वाली, तो उसका उल्टा परिणाम निश्चित है। लेकिन भक्ति योग में कोई कितनी भी त्रुटियों के साथ भक्ति योग करे, परंतु यदि उसके अंदर भाव ठीक है उसका, तो भगवान उन त्रुटियों को दुर्लक्ष कर देते हैं। ये हाल ही में मुझे किसी ने चित्र भेजा था, तो मैंने सोचा उल्टा परिणाम के ऊपर ये लगाते हैं, कि बच्चे को खिलाने के लिए व्यक्ति को जो कुछ पहन के गया, देखो बच्चे की हालत क्या हो रही है, अपने आप को सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी वुमन बनाकर। तो कई बार हमारी भी हालत ऐसी होती है कि इस भौतिक संसार की जो तथाकथित सिक्योरिटी है उनके बलबूते पर हम जीते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड ही मार देते हैं प्रधानमंत्री को, है ना? तो जिनको पैसे दे देकर नमक खिलाया वही बंदूक तान कर मार डाला। तो ये भौतिक संसार, चाहे वो कर्मकांड हो या अष्टांग या ज्ञान। अब ये विशेषता, इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से उस व्यक्ति की रक्षा करता है। तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सर्वप्रथम हम इस शब्द को लेंगे स्वल्पम। तो इसे यदि हम ब्रेक करें तो सु तथा अल्पम, सु तथा अल्पम से बना है स्वल्पम। तो इसका पहला अनुवाद है अल्पम का अर्थ होता है अल्प, अल्प मात्रा में थोड़ा, और सु का अर्थ होता है बहुत थोड़ा, मतलब बहुत थोड़ा सा। यदि कोई इस प्रकार के धार्मिक भक्ति योग में लगता है, थोड़ा सा ही कर लेता है, तो उसे त्रायते महतो भया, महान भय से उसकी रक्षा होती है। हमारे आचार्य एक और अर्थ बताते हैं, सु का एक और अर्थ है सुंदर। तो यदि कोई थोड़ी सी भक्ति लेकिन सुंदर तरीके से करे तो उसे कहते हैं स्वल्पम। थोड़ी सी भक्ति लेकिन सुंदर तरीके से। इसलिए भक्ति योग में क्वांटिटी नहीं देखी जाती, क्या देखी जाती है? क्वालिटी, गुणात्मक भक्ति देखी जाती है, मात्रात्मक नहीं। इसलिए कितने सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सुदामा, क्या क्वांटिटी लेकर गए थे वो? लेकिन और क्वालिटी उसकी नहीं थी, वो जो पदार्थ लेकर गए थे पोहा, क्वालिटी क्या थी? उनके भक्ति की, भावग्राही जनार्दन। जैसे वो अक्षय पात्र की कहानी है, द्रौपदी का अक्षय पात्र, जब वो लोग वनवास में थे और द्रौपदी के पास ये अक्षय पात्र था, जिसमें द्रौपदी खाने के पश्चात उससे पहले जितने लोग आ जाएं उसमें से फिस्ट खिला सकती थी। कई बार हमारे किचन डिपार्टमेंट को यदि ऐसा अक्षय पात्र मिल जाए तो चिंता ही खत्म। तो द्रौपदी के पास ऐसा अक्षय पात्र था, लेकिन द्रौपदी यदि खा ले उसमें से, तब फिर उस दिन के लिए और उसमें से कोई कुकिंग नहीं हो सकती। तो द्रौपदी खा चुकी थी और फिर, और दुर्योधन वो इतना चालाक, दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास ऐसा अक्षय पात्र है, तो उसने दुर्वास मुनि को भेजा और 60,000 दुर्वास मुनि के शिष्य, और वो भी टाइमिंग के साथ कि इसी टाइम में जाना, वो द्रौपदी का हो जाएगा उसके बाद में जाना। और दुर्वास मुनि तो उनको तो यदि ठीक से उनकी सत्कार नहीं हुआ तो फिर तो पूरा भूकंप मचा देते हो। तो दुर्वास मुनि वहां पहुंचते हैं और द्रौपदी का तो हो चुका था, तो युधिष्ठिर महाराज तो बोल दिया आप स्नान करके आइए, तैयार रहेगा। तो अब द्रौपदी कहती तैयार रहेगा, आपने ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दिया तैयार रहेगा? होता है कई बार ना, आजकल भी पति प्रॉमिस कर देते हैं, हाँ प्रभु जी आइए प्रसाद के लिए आ जाओ, और फिर पत्नी को बोल देते हैं आ रहे हैं पांच ब्रह्मचारी आ रहे हैं, एक तो पांच वो भी ब्रह्मचारी, किसे पूछ के उनको इनविटेशन दिया, चलो अभी किचन में ये लो बनाओ। तो ऐसे द्रौपदी ने बोल दिया, वो भी 60,000, सोचिए दुर्वास मुनि के शिष्य। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित होते हैं और भगवान, क्योंकि द्रौपदी उनको पुकारती है कि यही हैं जो मेरी रक्षा करेंगे, पहले भी उन्होंने की रक्षा की थी। तो भगवान आते हैं और भगवान बोलते हैं अरे मेरे को भूख लगी, पहले मेरे को खिलाओ। दुर्वास मुनि तो साइड में, 60,000 से साइड में, मुझे भूख लगी। तो द्रौपदी है, आप मदद करने आए हो या जले पे नमक? तो भगवान अक्षय पात्र से कहते हैं कि उसमें कुछ चिपका हुआ है, शाक कुछ चिपका हुआ है, लेकर आओ। इतना सा स्वल्पम, वही हम चर्चा कर रहे हैं, स्वल्पम इतना सा खाया, वहां पर सब डकार मार रहे हैं, दुर्वास मुनि और उनके सारे शिष्य डकार मार रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इधर तक खा लिया। जैसे कई बार होता है ना कोई फीस्ट में, शुरू शुरू में हम कि पता नहीं वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3-4 सर्विंग एक साथ ही कर लो अंदर, तो इधर तक ऐसे भरा हुआ। और फिर भगवान कृष्ण भी भीम को भेजते, जाओ बुलाओ। तो भीमसेन जाते अपना गदा वदा यहां वहां हिलाते हुए, तो भीमसेन को देखते, अरे भीमसेन आए बुलाने के लिए, नहीं जाएंगे तो पता नहीं, तो यहां पर जबरदस्ती और खिला देंगे। तो वही पीछे दुम दबा के सब भाग चुके वहां से। तो स्वल्पम, कोई सुंदर तरीके से अल्प मात्रा में भी भगवान की भक्ति करता है, तो ये उसका अर्थ है। अब महान भय की परिभाषा, जैसे इस पंक्ति में भगवान ने कहा है त्रायते महतो भयात्। तो महान भय की परिभाषा बताई गई है, श्रील प्रभुपाद कहें अपने तात्पर्य में, पापमय जीवन और निम्नतर पशुवत योनि। तो मनुष्य योनि में पापमय जीवन, ये सबसे महान भय। तो पाप से भयभीत होना चाहिए, पाप करने से एक मनुष्य को भयभीत होना चाहिए, और उसका परिणाम क्या है, पशु की योनि। तो श्रील प्रभुपाद ने इसी श्लोक के ऊपर एक मॉर्निंग वॉक में कहा, व्हाट इज दैट महतो भयात, व्हाट इज दैट ग्रेट फियर। तो सभी कहे टू ग्लाइड डाउन इनटू द एनिमल स्पीशी। प्रभुपाद तात्पर्य में भी लिखते हैं, प्रभुपाद ने लिखा है द ग्रेटेस्ट फियर फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज टू ग्लाइड डाउन इनटू द एनिमल स्पीशीज। ये सबसे बड़ा भय मनुष्य का है कि मनुष्य शरीर छूट जाए और पशु का शरीर मिले। हालांकि श्रील प्रभुपाद जब ये कहा करते थे अमेरिका में शुरू शुरू में, तो कईयों को ये प्रश्न होता है, क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम, इफ आई गेट अ डॉग्स बॉडी अच्छा है ना। हाँ, अमेरिका में डॉग जो कुत्ता रहता है उसको बहुत आलिशान ट्रीटमेंट मिलता है। तो प्रभुपाद को आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे मनुष्य हैं, कुत्ते बनने में इनको कोई हर्ज नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा तथास्तु, बनो फिर कुत्ते। महतो भया, तो प्रभुपाद ने उस मॉर्निंग वॉक में कहा कि इसे महतो भयात इसलिए कहा गया है कि वो केवल एक योनि में नहीं जाता है किसी भी पशु के, वो हर एक योनि में उसे विचरण करना पड़ता है। तुकाराम महाराज भी एक अभंग में कहें कोटि कोटि योनि, कि जैसे कि हम अक्सर ये पॉइंट को कहें, कुत्ते की योनि में गया तो हर एक कुत्ता बनना पड़ता है उसको, पक्षी की योनि में गया तो हर एक प्रकार का पक्षी बनना पड़ता है, पेड़ की योनि में गया तो हर एक प्रकार का पेड़ बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े की योनि में गया तो हर एक प्रकार का कीड़े मकोड़ा बनना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य योनि में जरूरी नहीं कि हर एक प्रकार का मनुष्य बनेगा, ये उल्टा है। मनुष्य में फिर गड़बड़ किया, वापस नीचे, और फिर पुनरअपि जननम चालू चक्र उसका। इसलिए महतो भयात इसको कहा गया। ये दो ध्यान में रखना कि मनुष्यों के लिए शास्त्रों के अनुसार और इस श्लोक के अनुसार, प्रभुपाद के तात्पर्य के अनुसार ये परिभाषा दी गई है। तो ये उदाहरण है कि मनुष्य शरीर किसी को मिला है लेकिन मनुष्य शरीर का उद्देश्य सिद्ध नहीं कर रहा है, तो ये उदाहरण हमारे कुछ भक्त दिए हैं कि कोई बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है लेकिन अगर कुत्ते के सामने रख दो तो कुत्ता इस प्रकार से इस्तेमाल करता है उसका। तो उसी प्रकार से यदि कोई उस अज्ञान में जी रहा है, हालांकि मिला है उसको ये मशीन, ये यंत्र जो मिला है, ये यंत्र इतना सोफिस्टिकेटेड है हमारा मनुष्य शरीर, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई करता है तो वो इसी प्रकार से। इसलिए थोड़ा ये ग्राफिक फोटो है, ध्यान में रहेगा कि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग की तुलना किससे की गई है। अब भगवान ने ये कहा है कि महान भय से रक्षा होती है यदि स्वल्प मात्रा में कोई भक्ति योग में लगता है। तो इसके कितने सारे उदाहरण हैं, अजामिल, अजामिल की स्वल्प भक्ति क्या थी, मरते समय उसने अपने पुत्र को पुकारा और कोइंसिडेंटली उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो ये प्रभुपाद एक प्रवचन में कहे कि अजामिल को लेने के लिए तीन यमदूत आए थे, क्योंकि अजामिल ने तीन तरीके से पाप किया जीवन भर, कर्मणा मनसा वाचा, अपने कर्मों से, अपने मन से और अपने वचनों से। इसलिए तीन यमदूत आए और वो भी बहुत भयावह दिखने वाले इस यमदूत अजामिल की आत्मा को नरक ले जाने के। तो तीन यमदूतों को प्रभुपाद कहते हैं, तीन यमदूतों को बुलाने के लिए अजामिल को जिंदगी भर तीन तरीके के पाप करने पड़े और मरते समय चार विष्णु दूत आए, क्योंकि नारायण इन चार अक्षरों का उच्चारण उसने केवल मरते समय कितने कुछ सेकंड में किया और चार विष्णु दूत आ गए अजामिल की रक्षा करने के लिए। तो ये उदाहरण है महतो भयात से कैसे अजामिल बचा। गजेंद्र का उदाहरण कि इतना बड़ा वो ग्राह, वो मगरमच्छ गजेंद्र को पकड़े हुए, जकड़े हुए और गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो रही है, परंतु एक उसने वो कमल का पुष्प अर्पित किया और उसके साथ प्रार्थनाएं अर्पित की तो भगवान तुरंत उपस्थित हो गए और गजेंद्र की रक्षा की उस महान भय से। द्रौपदी का उदाहरण तो हम जानते हैं, इतना बड़ा भय द्रौपदी के जीवन में, किसी भी स्त्री के जीवन में इससे भयावह स्थिति और कोई नहीं हो सकती जो द्रौपदी की हुई थी, और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा उस भय से की। प्रहलाद महाराज सोचिए, जिनके पिता नंबर वन टेररिस्ट और हिरण्यकशिपु का वहां पर, हिरण्यकशिपु के आसपास एक ही व्यक्ति जो हिरण्यकशिपु के आदेशों का पालन नहीं करे वो प्रहलाद, खुद का ही बेटा। तो सोचिए, इतना खूंखार व्यक्ति और अपने बेटे को मारने चला, लेकिन उनकी रक्षा, क्या उन्होंने स्वल्प भक्ति की थी, अपने माता के गर्भ में श्रवण किया था, बस वो श्रवण करने मात्र से उनके अंदर वो ऐसी शुद्ध चेतना आई, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि देखो उन्होंने एक नया अवतार धारण किया। प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक नया रूप, आधा नर आधा सिंह ऐसा रूप धारण किया, और फिर उनके पुराण नरसिंह पुराण और एक लोक बना नरसिंह लोक, और हम लोग इस्कॉन में तो भगवान श्री नरसिंह देव के विषय में इतना सब कुछ करते ही। तो सोचिए कि इतनी सी भक्ति प्रहलाद महाराज ने जो की थी, 5 वर्ष के थे और इतने बड़े अवतार उनके रक्षा करने के लिए। और अंतिम उदाहरण है भरत महाराज की, इनसे त्रुटि हुई, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई भरत महाराज से, ये रामायण के नहीं है ध्यान में रखिएगा। तो ये भरत महाराज सब कुछ छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए, लेकिन एक हिरण से आकर्षित हो गए और मरते समय हिरण की चेतना में मरे, तो हिरण, हालांकि हिरण का शरीर मिला, लेकिन भगवान ने रक्षा कैसे की, उनकी चेतना वो भरत महाराज की रखी। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं महान से महान भय से रक्षा करता हूं मेरे भक्त की, तो उसकी चेतना की रक्षा करते हैं भगवान। ये ध्यान में रखना होगा कि शरीर का अंत होना ही है और वो आवश्यक है मुक्ति के लिए, लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो है हमारी चेतना की। और इसलिए बद्ध जीवों के लिए जो भगवान उपयुक्त विज्ञापन आज के श्लोक में दिए हैं, तो उससे ये समझ में आता है कि ये दो चीजें विज्ञापित भगवान कर रहे हैं, भक्ति योग, क्या एडवर्टाइजमेंट, भक्ति योग का एडवर्टाइजमेंट है आज के श्लोक में। भक्ति मार्ग की विशेषता, महान भय से रक्षा। कोई भी आप देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है एडवर्टीजमेंट का, आजकल टीवी में इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये कमर्शियल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट की विशेषता बताते हो, है ना, जैसे गुड नाइट, क्या ऑल आउट, गुड नाइट ऑल आउट, ये सब लगाते हैं। तो उसका एडवर्टीजमेंट क्या करते हैं कि इसको आप लगा दो तो सुख की नींद आप सोओगे, ऑल आउट, मच्छर के साथ आप भी आउट, और उसके साथ साथ भय से रक्षा बताते हैं, कई बार दिखाते हैं बड़े बड़े मच्छर ऐसे आ रहे हैं ऑल आउट के सामने, फिर धराशायी होके गिर गए। तो बता रहे हैं कि बड़े से बड़ा मच्छर क्यों ना आ जाए, महान से महान भय क्यों ना आ जाए, जो आपको मलेरिया देकर मार डाल सकता है, ऐसे बड़े से बड़े मच्छर को ये उसको गुड नाइट बोलता है, आपको भी गुड नाइट बोलता है, मच्छर भी सो रहा है आप भी सो रहे, और वो जो कंपनी वाला है वो भी चैन से सो रहा है पैसे कमा के। तो भगवान भी ओरिजिनल का, ये ओरिजिन कहां से एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट कि प्रोडक्ट की विशेषता और कैसे आपको महान से महान भय से रक्षा कराएगा। ये तो याद रखना, गुड नाइट ऑल आउट। और यहां पे भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति योग की स्वल्प मात्रा में भी उस धर्म का पालन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आने वाले बुधवार को, अगले बुधवार को हमारे राधा कृष्ण के अर्च विग्रह प्रस्थापित होने वाले हैं, तो स्वल्प मात्रा में भी कोई उनकी सेवा करता है तो महान से महान भय से रक्षा तो होती है, लेकिन महान से महान लाभ भी उसे प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी भक्तों से जो उपस्थित यहां पर हैं और जो नहीं भी उपस्थित हैं, उनको आप कह सकते हैं कि आने वाले 22 और 23 तारीख को, अपने मंगलवार और बुधवार को, हमारा अगला जो कल अगले हफ्ते का बुधवार का कार्य, बुधवार ही है ना, बुधवार का कार्यक्रम दिया जाएगा हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा, और वो वहां भरे पंडाल में होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग भाग लीजिए इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में, जो हमारे नासिक इस्कॉन के इतिहास में पहली दफा श्री श्री राधा कृष्ण के अर्च विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने जाने वाली है ये दो दिन, 22 और 23 तारीख को। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग उत्साह से भाग लीजिए, सेवा कीजिए, और जो आज का श्लोक है इसे समझते हुए, बहुत ही टाइम पर ये श्लोक आया है, भगवान का सेटिंग भी देखो, जैसे भगवत गीता का सेटिंग भगवान ने ऐसे किया, इसलिए जहां पर भी भगवान अवतरित होते हैं अपना पूरा सेटिंग कर कर अवतरित होते हैं, इसलिए श्लोक भी इसी प्रकार का आया है कि महान से महान भय से हमारी रक्षा होगी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की स्वल्प मात्रा में भक्ति यदि प्रारंभ भी कर दें तो। श्रील प्रभुपाद की जय।